ये रेडियो नेपाल है। अब मीनू प्रधान से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जाजरकोट भूकंप को देखते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने अपनी यूरोप को यात्रा को किया स्थगित। कल करेंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सरकार ने जाजरकोट भूकंप प्रभावितों के उद्धार, राहत और पुनर्स्थापना के काम को दी तीव्रता। जाजरकोट को आज फिर 5.8 रिक्टर इसके पराकंप ने हिलाया। सरकार को दिए समर्थन को फिलहाल कायम रखकर सरकार से बाहर होने का निकप एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दल का निर्णय और विषाक्त धुएं से बचने के लिए नई दिल्ली में सवारी साधनों के लिए ऑड इवन फार्मूला किया गया लागू। अब समाचार विस्तार से। जाजरकोट भूकंप को देखते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने परसों के लिए तय अपनी फ्रांस, इटली और जर्मनी की यात्रा को स्थगित कर दिया है। विनाशकारी भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्ति की घड़ी में देश छोड़ने को अनुपयुक्त मानते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने अपनी यूरोप यात्रा को स्थगित किया है। राष्ट्रपति पौड़ेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने ये बात बताई। राष्ट्रपति पौड़ेल भूकंप प्रभावितों के हालात का जायजा लेने के लिए कल सुबह भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सरकार ने जाजरकोट भूकंप पीड़ितों के उद्धार, राहत और पुनर्स्थापना के कार्यों को तीव्रता दी है। आज सुबह जाजरकोट जिला मुख्यालय खलंगा लगाए क्षेत्रों का उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री पूर्ण बहादुर खड़का ने स्थगित निरीक्षण किया। ये जानकारी उनके सचिवालय ने दी है। आज दोपहर 4:31 पर जाजरकोट रामीडाणा को केंद्र बिंदु बनाकर 5.8 रिएक्टर स्केल का पराकंप आया। ये जानकारी भूकंप मापन केंद्र सुरकेत ने दी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ने जाजरकोट और सुरुकुम पश्चिम के भूकंप पीड़ितों के उद्धार एवं राहत के लिए सरकार के राहत कोष में 25 लाख रुपयों का सहयोग करने का निर्णय किया है। आज केंद्रीय कार्यालय आलोक नगर में हुई सचिवालय बैठक ने ये निर्णय किया। ये जानकारी पार्टी के प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक ने पार्टी महाधिवेशन को माघ महीने में करने का भी निर्णय किया है। जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के भूकंप से प्रभावित होने के कारण पहाड़ी जिलों में नेपालगंज के रांझा विमानस्थल से आपातकालीन उड़ान भरी जा रही हैं। नेपाली एयरलाइंस की जहाज और नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर ने शनिवार से ही आपातकालीन उड़ान शुरू कर दी थी। सेना की हेलीकॉप्टर ने जाजरकोट और रुकुम पश्चिम से भूकंप में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए नेपालगंज लाने का काम कर रही है और नेपालगंज से राहत सामग्रियों को प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा रही है। ये जानकारी नेपालगंज विमानस्थल कार्यालय ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा एमाले ने कोशी प्रदेश सरकार से बाहर होने का निर्णय किया है, लेकिन सरकार को दिए अपने समर्थन को वापस नहीं लेगी। आज हुई एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दल की बैठक ने ये निर्णय किया। ये जानकारी प्रमुख सचेतक रेवती भंडारी ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने मालपोत कार्यालय परसा के तत्कालीन 5 मालपोत अधिकृत, 1 कंप्यूटर अधिकृत और 1 नायब सुब्बा को राजस्व रिसाव के आरोप में विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। मालपोत कार्यालय परसा के तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्र के खिलाफ राजस्व रिसाव के आरोप में 2.9 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी तरह तत्कालीन अधिकृत भूप बहादुर बोगटी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोपाल ढुंगाना, अधिकृत पदम प्रसाद अरियाल, चंद्र बहादुर भंडारी, तत्कालीन नायब सुब्बा किरण प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ दुगना जुर्माना क्लेम्ड अमाउंट सहित भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जानकारी अख्तियार के प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलिया ने दी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने नेपाल में कृषि, पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय उद्योगी व्यवसायियों से आह्वान किया है। आज काठमाण्डू में एशिया प्रशांत क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ क्यासी और नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 37वीं क्यासी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने नेपाल में निवेश के लिए अवसर बढ़ाने और निवेश को सहज बनाने के लिए कानून बनाए जाने का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय उद्योगी व्यवसायियों से नेपाल के कृषि पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गिरकर आपातकालीन स्तर तक पहुंच गई है। यहां की राजधानी गैस चैम्बर बन रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि प्रदूषण के तय पैमाने से दिल्ली का प्रदूषण 100 गुना ज्यादा हो गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 450 से पार बना हुआ है। आज सुबह नोएडा में AQI 616 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन के बीच सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन फार्मूला लागू करने का फैसला किया है। इसमें ऑड तारीख वाले दिन वही वाहन चलेंगे जिनका आखिरी नंबर ऑड होगा और इसी तरह इवन वाले तारीख में इवन नंबर के वाहनों को ही सड़कों पर उतरने की इजाजत होगी। बढ़ते प्रदूषण के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया है, जिसके तहत दिल्ली में निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन के काम पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। कचरा जलाने पर नजर रखी जा रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जाजरकोट भूकंप को देखते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने अपनी यूरोप यात्रा को किया स्थगित। कल करेंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। सरकार ने जाजरकोट भूकंप प्रभावितों के उद्धार, राहत और पुनर्स्थापना के काम को दी तीव्रता। जाजरकोट को आज फिर 5.8 रिएक्टर के पराकंप ने हिलाया। सरकार को दिए समर्थन को फिलहाल कायम रखकर सरकार से बाहर होने का नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दल का निर्णय और विषाक्त धुएं से बचने के लिए नई दिल्ली में सवारी साधनों के लिए ऑड इवन फार्मूला किया गया लागू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभ रात्रि।